بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. وقال تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. مقامات سلوک میں سب سے پہلے توبۃ النصوح کا تذکرہ آیا، اس کے بعد انابت الی اللہ، اور آج یہ تیسرا مقام ہے زہد. فرمایا: دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. جیسے جانور چرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد، یہ اصل مقصد ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دنیا کا نقشہ ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، لیکن انسان اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ فرمایا: خوردن برائے زیستن اور ذکر کرتن. کھانا جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے. خوردن برائے زیستن اور ذکر کرتن، لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ تو معتقد کے زیستن از بہر ہوتا ہے. انسان کو سمجھ رہا ہے کہ جینا ہی کھانے کے لیے، تو کھاتے ہی رہتے ہیں. آج کل بعض ملکوں میں ایسا ہو گیا کہ گھر میں پکانے کا قصہ ہی ختم ہو گیا. صبح جاتے ہیں ہوٹلوں میں کھا لیتے ہیں، دوپہر کو جاتے ہیں آفسوں میں وہاں کھا لیتے ہیں، شام کو لوٹ کے آتے ہیں پھر پوری فیملی جا کر باہر کھاتی ہیں. تو گویا کہ کھانا ہی ترنا یہی ہو گیا ہے. گھروں میں باعث طریقے پہ رہنا، گھروں میں پکا کر سب بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کھانا، یہ سسٹم ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. تو باہر باہر ہی سے کھانا، یہ اچھی چیز نہیں تھی. فرمایا: ہوٹلوں میں کھانا، اس کی وجہ سے دلوں میں ظلمت آتی ہے، بہت ساری چیزوں میں فرق پڑتا ہے. اگر فطر سے ضرورت بھی پیش آئی تو حضرت نے فرمایا: کھانا خرید کے اپنی جگہ پر لا کر کھائیں. خیر، تو فرمایا ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، حالات کی آزمائشیں مختلف ہیں. کسی کو صحت دے کر آزمایا، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو خوشی دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو ترقی دے کر، کسی کو تنزلی دے کر، کسی کو نعمت دے کر آزماتے ہیں، اور کسی سے لے کر آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں تمہیں خیر اور شر کے امتحان کے ذریعے سے. دونوں صورتوں میں بھی آزمائش ہے، دیتے ہیں تو بھی آزماتے ہیں، لیتے ہیں تو بھی آزماتے ہیں. اور تبارک الذی میں اللہ نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ताकि आजमाए के कौन अच्छा अमल करता है। तो जिंदगी भी हम देते हैं और मौत भी देते हैं, इस बात को मालूम करने के लिए और इस आजमाइश में डालने के लिए कि कौन अच्छा अमल करता है। फरमाया आजमाइश के तरीके मुख्तलिफ हैं, मगर एक इम्तिहान ऐसा है जो हम में से हदीयत के साथ लगा हुआ है, वो यह है कि दुनिया के अंदर इतनी चमक दमक है कि बंदे का दिल उलझा लेती है, बंदे का दिल मोह लेती है, बंदे को अपने साथ मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेती है और बंदा इस दुनिया में अपनी जन्नत बसानी शुरू कर देता है। इंसान अपने दिमाग में सोचता है कि मेरा बिजनेस ऐसा हो, बीवी ऐसी हो, बच्चे ऐसे हो, खुला चीज ऐसी हो, वो अपनी जन्नत को अपने दिमाग में डिजाइन करता है और फिर इस जन्नत को बनाने में पूरी जिंदगी गुजार देता है। रब्बे करीम ने तो जन्नत आखिरत में बनाई, जबकि हम इस दुनिया में जन्नत जानते हैं। इसीलिए शैतान हमसे लंबी उम्मीदें बंधवाता है, जैसे कि सारी उम्र हमको यहीं रहना, कहीं यहां कभी यहां से नहीं जाना। ये इतना बड़ा धोखा है कि हम में से अक्सरों बेहतर फंस जाते हैं। दस्तूर तो यह होना चाहिए था कि जितना हमको दुनिया में रहना है इतना दुनिया के लिए मेहनत करते। वामल ने दुनिया का बेतदरी हयात का भी, वामल ने आखिरती का बेतदरी बकाई का। आज दुनिया के लिए इतना अमल कर जितना तुझे यहां रहना है और आखिरत के लिए इतना अमल कर जितना कि तुझे वहां बाकी रहना है। और आखिरत तो हमेशा रहने की जगह है, वाल आखिरत तो कई हूं वहां। दस्तूर तो यह होना चाहिए था कि जितना हमको दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया में तो रहना है 100 साल 50 साल और आखिरत में रहना है करोड़ों साल, दोनों की आपस में कोई निस्बत ही नहीं। जबकि तैयारी में हो तो मामला उल्टा है, सारा दिन सारी रात फकत दुनिया के काम में, फकत दुनिया का ध्यान। दिन गुजरता है तो हम दुकान के अंदर और रात आती है तो दुकान हमारे अंदर। क्या फरमाया था? दिन गुजरता है तो हम दुकान के अंदर और रात आती है तो दुकान हमारे अंदर। वो हिसाबा चलते रहते चक्कर, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, ये पेमेंट आया क्या, वो माल आया क्या, ये सारी चीजें जो है एक ताजिर से हम मिले उसे जरा जमात में जब तस्की किए बुलाया था तो बोले हजरत मेरे पास वक्त ही नहीं बोले। हम पूछे भाई जरूरत के लिए तो वक्त निकालते रहे जना ऐसा, वो भी ऐसा निकालता हूं मैं, खाना जो है वो एक हाथ से खाते रहता हूं दूसरे हाथ से सामान देते रहता हूं। बोला अच्छा भाई ये इनकमिंग का वो आउटगोइंग का क्या हिस्सा है मुझे। वो भी किसी को बाजू वाले को बुलाकर ठहरा देता हूं, जल्दी जाकर फौरन सारे नौकर में आ जाता हूं, ऐसा हाल है। एक बोलने वाले व्यापारी से जाकर मिले, 3 दिन की तश्कील की है, वो मुंह फुका लिया, क्या हो 3 दिन बोलते ना, क्यों वही क्या, मैं रात की 11 बजे तक दुकान में रहता, फिर वो 3 बजे से बाजार जाता, इतना करके भी जो है मेरा जीना मुश्किल से चलता है, अब 3 दिन के लिए बुलाते हैं ना ऐसा करके। तो हजर क्या फरमा है, दिन गुजरता है तो हम दुकान के अंदर और रात आती है तो दुकान हमारे अंदर। इसी की सोच, इसी का ध्यान। हम तो दुनिया के ऊपर उम्मीदें लगाकर बैठे, ये धोखा है। दुनिया का इम्तिहान, इसीलिए इंसान दुनिया में तो रहे मगर दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आने दे। इस दुनिया की मिसाल पानी के मानिंद है, कश्ती के चलने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी ना हो तो कश्ती कैसे चले, रेत पर तो चल ना सके। तो पानी की जरूरत भी है मगर फायदा तब है जब पानी कश्ती के नीचे हो ऊपर ना हो। और अगर कोई फर्ज वो पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती के डूबने का सबब बने। बिल्कुल यही मिसाल दुनिया की है। अल्लाह ताला इंसान को माल और दौलत दे तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, मगर वो हाथ में रहे, जब हाथ से निकलकर वो दिल में आ जाती है तो बंदे की इम्तिहान की कश्ती, ईमान की कश्ती को डूबोने का बाइस बन जाती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे इस दुनिया में ऐसे रहें कि दुनिया से मुतासिर होने के बजाय, इसमें उलझने के बजाय बस उसका ध्यान मेरी तरफ लगा हो। एक किस्सा है, लतीफा है, जो भी हो बहरहाल, एक बादशाह कोई खजाम जो है वो खजाम करता था, बाल बनाता था, तो मामूल जो जगह होती थी तो वहां पर बनाता तो बहुत डर डर कर बहुत अदब के साथ बाल बनाता। अब बादशाह को बाल बनाना तो ये नजर देख तक बस ऊपर नीचे पसीना पसीना हो जाए, अब डरते डरते बनाता। एक मतलब बादशाह को बहुत ज्यादा काम था, मसलूफ था, तो उसको हजाम को अपनी जगह ही बुला लिया, ध्यान बना दे भाई यहां से मैं हट नहीं सकता ऐसा करके। अब वो बादशाह के तख्त जो भी हो बहरहाल वहां पर आकर अब हजामत कर रहा है, तो करते करते एक बार बोल दिया, बादशाह तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होती घर को अच्छा लेती है। अब बादशाह के कदम से जमीन हट गई, क्या बोल रहा है नालायक, कहीं का हजाम जाकर इतनी बड़ी बात पूछेगा मुझे, एक डांटा डांटा तो जरा खामोश हो गया दम गया। फिर हजामत करते करते फिर थोड़ी देर के बाद वही बात दोहरा है। अब बादशाह जो है एकदम अपसेट हो गया, हजाम इतनी बड़ी बात पूछ दिया मुझे, मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरी तौहीन कर दिया, मेरी नाक नीचे कर दिया, नाना गुस्सा तो बहुत आया लेकिन परेशान हो गया कुछ है गुस्सा। फिर अपने दरबारियों से खास लोगों से बादशाह जो है बहुत दुख की बात सुनाना शुरू किया कि इतनी बड़ी बात हजाम पूछ दिया है, कैसे इसकी जरूरत दी क्या। तो उसमें एक समझदार जो है वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत परेशान होने की जरूरत थी, आप मामूल से कहां हजामत बनाते थे फलां जगह में, आज क्या हुआ, मसरूफियत की वजह से यहीं बुलाकर बना लिया। अच्छा बादशाह सलामत, आईदा मरतबा हसबे मामूल जहां आप हजामत बनाते हैं वही बनाइए। बोला तो फिर जहां आईदा मरतबा जब हजामत की जगह पर बनाए तो फिर वैसे डरते करते वो हजामत किया। तो फिर अब वजीर बादशाह को समझा रहा है, देखो बादशाह सलामत ये जो इतनी बड़ी बात बोला उसकी वजह यह है कि आपके तख्त के नीचे सोना है, माल है, अब उसकी जगह ऊपर खड़के जो बना रहा है तो उसका दिमाग भी जो है उसकी वजह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी कशिश ग्रेविटी पावर बोलते हैं ना, उस तरीके से जमीन की कशिश होती है तो यहां माल की कशिश है, वो उसको खींच रही थी तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब देखो जगह हटते ही बदलते ही वो फिर जो है डरते डरते कर रहा है, तो जमीन के अंदर सोना रहे तो वो दिल को इतना खींचता है कि एक बुजुर्ग बोले सुख के जेवर देखो दिल के ऊपर इतने देखिए, अब जेबों में तो नोट आने हो रहे तो नोट दिल को लग ये कर रहे तो दिल का हाल क्या रहेगा, देखो ना सड़ा दिल के ऊपर ही नोट। अब नोटों के साथ आजकल मोबाइल में रख लेते हैं, अब दुनिया पूरी दिखती रहती है, ये वो सारी चीजें भला बदतर सुनी सुनाई देता कि नहीं देता कि, लेकिन सारी चीजें उसमें आती रहती भला बदतर सब उसका असर होगा कि नहीं होगा। तो फरमाया परवर दिगार आलम एक शेर का खुलासा बयान कर रहे हैं, आपने तख्ते पर बांध कर दरिया के दरमियान हमें डाल दिया, साथ हुक्म दे दिया कि तुम्हारा दामन तक ना हो। तो ये असल हकीकत है कि दुनिया में हम रहें और दुनिया हमारे अंदर ना है, जैसे कश्ती पानी में रहे लेकिन पानी कश्ती के अंदर ना है। हमारा यही हाल है कि हम दाएं बाएं आगे पीछे दुनिया ही दुनिया, ये गाड़ियां ये मोटरें ये कारें ये बहारें ये मकान, ये दुकान, ये सब अपनी तरफ बुलाती, दावत देती और इंसान इनमें उलझकर अगला साल अच्छे हासिल हो जाता है। अब फिर क्या करे इंसान, दुनिया में तो रहना है, जॉब को जाना, जॉब को जाना, घर बार कारोबार संभालना है, तो क्या करे। अब शर्त यह है कि दुनिया में रहे मगर दुनिया में उलझे भी नहीं, इसका नाम इम्तिहान है। जितनी मर्जी दुनिया इसके पास हो, वक्त का बादशाह हो, लेकिन अगर उसका दिल उलझा हुआ नहीं है तो ये बादशाह के बावजूद जन्नत में जाएगा, ये माल और दौलत के बावजूद जन्नत में जाएगा। जबकि एक आदमी गरीब है मगर दिल में हवस है, वो गुर्बत के बावजूद दुनिया की मोहब्बत की बिना पर जन्नत में जाने से महरूम हो जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को कारून के साथ खड़ा करेंगे, जबकि उनको दुनिया में खाने को रोटी नहीं मिलती थी, वो कहेंगे या अल्लाह हम तो भूखे नंगे थे, कारून के साथ हमारा हसर क्यों। तो फरमाया दिन की हसरत तो तुम्हारी यही थी, या अलैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी वो कुछ होता जो कारून को मिला। तो दिल में ये बात, इसलिए तुम्हें इसके साथ खड़ा कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की बड़ी करामत, एक बहुत अजीब बात फरमाया। तो बंदे के दिल की कैफियत ये फैसला करती है कि ये दीनदार है या दुनियादार है। हजरत सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन में से बार हजरत बहुत अमीर भी थे मगर वो पक्के दीनदार थे, दुनिया उनको अपनी तरफ मुतवज्जे न कर सकी। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु एक रात मेहराब में खड़े हुए और फरमा रहे थे, या सफराओ या मैदाओ गुर्री गैबी, ए सोना ए चांदी मेरे गैर को धोखा दे, तो मैं तेरे धोखे में आने वाला है। तो दुनिया को बोल रहे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, ये अजीम हस्तियां थी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त तरबियत दी थी, इनको बनाया था, इनके दिल सोने के बन गए थे। चुनांचे हजरत अब्दस खानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात लिखी है। हजरत फरमाते हैं, आम लोग जो करामत वगैरह समझते हैं वो क्या है, अब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की करामतें क्या है अगर किसी से पूछे तो बोलेंगे वो दरिया में घोड़े दौड़ाए, वो जंगलों में ऐसा करें वैसा करें। तो हजरत फरमाते हैं इनकी बड़ी करामत क्या थी, चुनाचे हजरत अब्दस खानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि अवामुल नास के नजदीक तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की सबसे बड़ी करामत यह है कि जब मौका आया तो उन्होंने अपने घोड़े पानी में डाले, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े ऐसा, और उनका पूरा लश्कर पानी में सलामत गुजर गया। तो फरमाते हैं अवामुल नास के नजदीक ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बड़ी करामत है, मगर फरमाते हैं कि अहले इल्म के नजदीक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बड़ी करामत यह है कि जब फुतूहात के दरवाजे खुले और उनके सामने माल और दौलत के दरिया बहे, कोई दरिया में से अपने ईमान को सलामती के साथ निकाल, सुभान अल्लाह, यही इनकी बड़ी करामत थी। यह दुनिया बड़ी जादूगरनी है, हर दुनिया सखारा। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह फुतूहात का जब जमाना आया तो रोते थे और आयत पढ़ते थे, कहीं अल्लाह क़यामत में यह ना कहते अजहब तुम तयबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, तुम दुनिया में दुनिया के मजे ले उड़े, दुनिया की चीजों से फायदा और बसापन हो गए, अल्लाह कहीं आखिरत में हमको महसूस न कर सकते, तो डरते थे। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती महमूद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मौके पर बैतुल माल जो था, जो कमरा जो हाल जो भी था उसमें जो माल आया सारा माल इकट्ठा करके तैराज करके
उसको झाड़ू देकर थोड़ा सा समय सुधरे की अदा करें कि ये मां यहां से निकल गए। इस तरीके से वो दुनिया से दूर रहते थे, अपने को अलग रखते थे। वो सुना से किसरा और कैसर ये बड़े बड़े मुल्क जब फता हुए हैं और वहां से माने गनीमत में सोने चांदी के ढेर आते थे और वो मस्जिद नबी के क्रम डाले जाते थे, तो धूप उन पर जब पड़ती और उसकी चमक जो मस्जिद नबी में आती थी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डरते थे, रोते थे कि कहीं अल्लाह इसके बारे में हमसे न पूछे और ये आयत पढ़ा करते थे, अल्लाह तुम तैयबा की तुम भी हया की तुम सुनिया और संता सुन। जब दुनिया का जादू हो जाता है फिर ना नमाज याद आती है, ना खुदा याद आता है, ना मस्जिद याद आती, ना फर्ज का एहसास, ना दीन का एहसास, बस हर वक्त दुनिया ही में लगे रहते। इसलिए इस इम्तिहान से हमें बचने की बहुत जरूरत है, मुहतात रहने की बहुत जरूरत है। एक मिसाल दे रहे हजरत, मुर्गा भी एक परिंदा होता है, जो है होता तो परिंदा है लेकिन रहता वो पानी में, आप पानी को बोलते हैं, तो मुर्ग परिंदे को कहते हैं। मुर्गा भी अमूमन पानी की सतह पर बैठती तो, लेकिन उसके पर चिकने और मुलायम होते, पानी में भीगते नहीं, तो अगर से वो पानी के ऊपर बैठी होती है मगर जैसे ही कोई शिकारी उसके करीब आता है तो वो फौरन उड़ जाता, फौरन वो चिड़िया और परिंदा क्या होता है उड़ जाता। अब इसमें हजरत जो बारीक बात शिकायत फरमा रहे हैं, क्योंकि परों के ऊपर पानी नहीं लगा होता इसलिए फौरन उड़ने पर कादिर होता, और अगर दिलफरक वही मुर्गा भी पानी में तर हो जाती तो पर बोझल हो जाते, और बोझल होने की वजह से वो उड़ नहीं सकते, फंस जाते, मारी जाते। तो मोमिन की मिसाल मुर्गा भी की तरह होनी चाहिए, रहे तो दुनिया में मगर दुनिया की चमक चमक उसके अंदर उजुब पैदा न करे, तकब्बुर पैदा न करे, उसको अल्लाह ताला से दूर न करे, इसकी ऐसी कैफियत हो जाए। आमतौर पर ये बोलने भी डर होता है, लेकिन होता है कि इंसान के पास जब थोड़ा माल रहता है तो छोटी जगह में रहता, मामूली घर होता, मस्जिद भी करीब रहती, लेकिन जरा पैसा ज्यादा आना शुरू होता तो जरा बड़ा घर बनने की फिक्र होती, जरा आउटर में जाते क्या होते, जरा पूछे तो यहाँ बहुत कंजेस्टेड है बोलते, क्या बोलते हैं, इसलिए जरा आउटर में गए तो जरा फ्री रहेंगे, बोलने को अच्छे अंदाज में ताजी हवा रहेंगी, खुली बाजार रहेंगी करके बोलने को अच्छा है। लेकिन हो गया क्या, जमात की नमाज छूटना शुरू हो गई, पांच वक्त की नहीं तो फजर से छूटेगी, अब जाते जाते फिर मशरूम की आज बड़ी तो और नमाजें छूटेंगी, फिर ले लेंगे जुमा एक आकर टिकेंगी, तो मस्जिद की नमाज से महरूमी बहुत बड़ी चीज है। इंसान कितना भी बड़ा दीनदार हो, कितना भी बड़ा दीन का लेवल हो, लेकिन उसके लिए थर्मामीटर जो है वो ये है कि मस्जिद में हाजिर होकर जमात के साथ नमाज पढ़ता है। इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह अपने गवर्नरों को जो लिखते थे जो नसीहतनामा ताकीदनामा, उसमें सबसे पहले नमाज के बारे में ही लिखते थे कि ये दीन का सुतून है और दीन में सबसे बड़ा हिस्सा नमाज ही का है, जो इसकी हिफाजत कर लेगा वो दीन के और अज्जा की हिफाजत करेगा, और जो अगर इसको जाया करेगा तो वो दीन के और हिस्सों का बहुत ज्यादा जाया करेगा। तो इसलिए सबसे पहले नमाज के बारे में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालियों को, अपने गवर्नरों को लिखा करते थे। अच्छा, अब हजरत फरमा रहे जोहद क्या है, चुनाचे दिल में दुनिया की मोहब्बत का ना होना इसको जोहद कहते हैं, जाहिर में माल ना हो इसका नाम जोहद नहीं है, माल ही नहीं रखना ऐसा नहीं है, माल ही नहीं रखना मतलब फिर ज़कात इसकी नहीं है, वो माल रहा तो ज़कात देंगे, अरे ज़कात फर्ज है बोले तो, माल रहा तो ज़कात देंगे, तो माल ही नहीं है ऐसी बात नहीं है, माल रहे लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत ना है। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़ाहिर सहाबी थे, वो एक दिन की जो जरूरियात है उससे ज्यादा कोई रखे तो बर्दाश्त करते नहीं थे, उसको दुरुस्त नहीं बोलते थे। क्या बहुत गुस्सा आ जाता हूं। एक बार हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने खिलाफत में गालिबन काबे अंबार या कोई थे, वो अहिंसा से सुन किया हजरत एक दिन से बढ़कर नहीं रखना मेरे को, फिर अल्लाह नकात पड़ा कि इस पर कौन से माल को गया है, एक साल गुजरना माल पर आता नहीं तो माल रहे तो इतना जखा है। अब उनको गुस्सा आया, बड़े जलाली से आग बीते लट्ठी उठाए भगाना शुरू करे, मैं बोलता हूं मेरी बात खिलाफ, अब उन्हों भगा इधो भागे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु देखे अरे रे ललाटा हो जाता है, हर जगह इन अपना जलाल दिखाएंगे तो फिर इंतजार हो जाएगा, इसलिए हजरत को समझाएगा हजरत यहाँ से रोक यहाँ सुन रहे तो परेशान करते रहेंगे, ये लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, जरा सुकून की जगह जरा हम आउटर में आपको पहुंचाते। तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु मकाम रमज़ान में बाहर जाकर थे, वहां पर एक सन्नाटे में एक सुनसान जगह पर जो है वहां की रिहाई हुई, और हुआ भी वैसे वो वही रहे और उनका इंतकाल भी वही हुआ, और इंतकाल भी ऐसी हालत थी कि बीवी जब रोने लगी तो इसलिए कि कोई भी नहीं है तो बोले परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक इसका इंतजाम करेंगे, चुनाचे एक जमात आई और उन्होंने पूरी कार्रवाई उनकी। तो ऐसे जाहिर साहबी थे हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये हजरत की शान थी। लेकिन हर एक के लिए मार रखना ही नहीं ऐसा नहीं है, हजरत उसी को समझा रहे हैं। चुनाचे दिल में दुनिया की मोहब्बत का ना होना इसको ज़ुहद कहते हैं, जाहिर में माल ना हो इसका नाम ज़ुहद नहीं, बल्कि माल की मोहब्बत का ना होना ज़ुहद कहलाता है। माल की मोहब्बत से क्या हो रहा है कि माल के खातिर अगर ये इंसान हराम काम करता हो, सूद का काम करता या हराम तरीके पर माल कमाता या हराम कामों में माल लगाता या इस माल की वजह से हराम काम करता हो तो ये इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होने की अलामत है। माल अल्लाह ताला की नेमत है, और याद रखना कि आज के दौर में माल इंसान के ईमान के लिए ढाल है, इन्हें कुछ रहा तो जिन्हें बच सकेगा, कुछ भी नहीं तो फिर भीख मांगता फिरेगा, हर एक के सामने हाथ फैलाता फिरेगा, इसलिए अपने डिफेंस के लिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ माल रहना, समझ गए। मगर माल के वबाल से बचकर रहना भी जरूरी है। उमूमन जब भी माल आता है वबाल लेकर आता है, माल का कम से कम वबाल यह है कि जिस बंदे के पास खूब माल हो उसका मरने को जी नहीं चाहता। भाई क्यों मरे, सब नेमतें जो मौजूद हैं तो मरने को जी ही नहीं चाहेगा, लिहाजा माल का यह सबसे कम वबाल है कि बंदे का मरने से दिल घबराता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान अपना दिल ऐसा बनाए कि दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए। अल्लाह ताला बंदे को जिस हाल में रखें बंदा अल्लाह से खुश रहे, कुछ अता कर दे तो शुक्र अदा करे, ना अता करे तो सब्र करे, सब्र करने वाला भी जन्नती और शुक्र करने वाला भी जन्नती। तो दिल ऐसा हो, दिल में दुनिया की दिलचस्पी ना होने को ज़ुहद कहते हैं। इसको हजरत कुरान के हवाले से आयत के हवाले से पढ़ो, चुनाचे कुरान पाक में एक ही जगह पर ज़ुहद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से जान छुड़ानी थी तो उनका जी चाहता था कि बस किसी तरीके से यूसुफ से हमारी जान छूटे, चुनाचे जब खरीदने वाले आए तो वह शराबों की समझ इन बख्श इन दरा ही महदूदा वो कानू ही मिन दिन, तो चंद छोटे सिक्कों की वर्ष उन्होंने बेच दिया। क्यों? इसलिए कि उन्हें यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं। जब ये कैफियत बंदे की दुनिया के बारे में हो जाए तो कहेंगे कि ये बंदा जाहिर बन गया। दिलचस्पी ना हो उसे दुनिया से, बाकी अल्लाह ताला जो अता कर दे अल्लाह की अता समझ कर इसकी कदर करे, चारों तरफ से रिस्क मिल रहा है तो फिर दोनों हाथों से दें, दोनों हाथों से दीन के और खर्च करें, दीन के काम और खर्च करें, आखिरत का भी अमीर बने। ये कहां का इंसाफ है कि दुनिया में तो इंसान माल मिलने पर, अब मिसाल दे रहे हजरत, 2 मिलियन डॉलर की कोठी बनाई, बंगला बना लिया, दुनिया में माल मिलने पर, लेकिन आखिरत के लिए कुछ भी नहीं भेजा, और वहां जाकर बेघर रहे, इतनी बेवकूफी की बात है। और वहां हमेशा रहना है तो फरमाए कि इंसान माल मिलने पर 2 मिलियन डॉलर की कोठी बनाए और कयामत के दिन आखिरत का फकीर बनकर खड़ा हो, ये तो अकलमंदी ना हुई। हक तो ये बनता है कि फिर वहां का भी ज्ञान हो। दीन पर इंसान इतना खर्च करे कि फिर अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में महल बना दें, बल्कि उसके लिए आखिरत में शहर आबाद कर दें, ये अकलमंद इंसान की निशानी है। तो बुजुर्गो, ये तीसरा मकाम है जुहद का, अल्लाह ताला इसका कुछ हिस्सा हमें नसीब फरमाए। इसके लिए हम अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगे और अल्लाह के नाम पर कुछ देने दिलाने की आदत भी हम डाले। वमान तो तुम इन सही पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो तुम खर्च करते हैं अल्लाह उसका बदला देंगे। हम पड़ोस को इसमें तफसीर पढ़ते थे, पड़ोस में हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह पास, तो हजरत की आयत तफसीर में पढ़ाए, ये शार्ट कोर्स होता था 2 महीनों का, शाबान और रमजान का, और बहुत बरकत वाला दर्श होता था। 5 घंटे की एक मैसेज तो थी, हजरत सुबह 7 बजे आकर रमजान में बैठते थे, 12 बजे तक बैठते। हजरत दान जहां बैठ गए वैसा हजरत, बस्तर के लेक भी वही जिसम थे, बदन भी भारी, इल्म भी पहाड़ जैसा इल्म था हजरत का। और फरमाते अपने अंदाज में फरमाते, मैंने जितनी किताबें मुताला शायद इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी ने की होगी। हजरत इस तरीके से फरमाते, बहुत भारी बदन, बड़ा इमामा, हर बात तहकीक से होते थे, लुगवी सरफी नहवी हर चीज वाहवाला, हत्ता कि अपनी उम्र भी बोलेंगे, मेरी उम्र अमरी एतवार से 77 है, शमसी एतवार से 75 है। इस तरीके से हर चीज वाहवाला बोलेंगे हजरत। तो असल बात जो मैं बोलना चाह रहा था वो भूल जा रहा हूं क्या, हाँ वो सब मिलते, ये आयत हजरत पढ़ाए तफसीर में, तो हमको जरा शौक हुआ कि अल्लाह फरमाते हैं जो तुम खर्च करोगे उसका बदला देते हैं। वो 89 की बात हो, हम 2 रुपए दिए उसे, तो शाम को मौती में साथ बुलाए, भाई इंडिया से जो बच्चे पढ़ने आए हैं आपकी खिदमत में एक हदिया आया है, बोले समझ रहे, तो हमको जो है 1,000 रुपये आपको एक सारे दिए हैं ऐसा करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वादा पूरा करते। भी दूसरे दिन पूछती है, फिर बोले भाई हजरत के साहेबजादे जो है वो बैरूनी मुल्क से जो आए हैं इंडिया से, उनको दावत दी है, उनके घर में आज दावत है, बोले क्या, तो हम गए, हमको खाना वाना खिला के पठानी ड्रेस का एक सूट जो है कपड़ा सब भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वादा वफा है। फिर तीसरे दिन भी सत्ता दिए, तो एक साहब वैसे दावत दिए और एक घड़ी हमको दिए, तो इस तरीके से सिलसिला कई दिन तक मजे में चलता रहा। अल्लाह माफ करे, उसके बाद हमारा यकीन फीका पड़ा क्या हुआ थी, वो सिलसिला भी फीका पड़ा। तो मेरे हाल कुछ तो देने की आदत डाले, तो अल्लाह ये जो फरमा रहे हो, मां तो मां में आम है, मां जो भी पैसा ही इकट्ठे नहीं है, जो भी हो और जितना भी हो, जो तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसके बदले में देंगे, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह इसका यकीन हमें नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें, फिर हम दुआ करते हैं।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا راحة المساكين اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم شرفنا بالتقوى وجبلنا بالعافية نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا وكل ختام كل ذي شر ما فرما الا छोटे बड़े तमाम गुनाह को माफ करना अल्लाह जो जानबूझकर जानने की हम तमाम को माफ करना अल्लाह इस वक्त में हम लोग अपने गुनहगार दिलों को गुनहगार जिस्मों को लेकर यहां पर हाजिर हुए हैं अल्लाह आपके नेक बंदे के पास हाजिर हुए हैं अल्लाह के सबक पे से अल्लाह हमारे तमाम गुनाह को माफ फरमा अल्लाह हम सच्चे दिल से तौबा करके यहां पर हाजिर हुए हैं अल्लाह जिस मकसद के लिए आए हुए हैं अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमा अल्लाह आपने हर तरह की नेमतें हमारे ऊपर फरमाई अल्लाह हमें माल दिया दौलत दी इज्जत दी शोहरत दी बीवी बच्चे दिए सेहत दी तंदुरुस्ती दी अल्लाह आंखों की नेमतें अता फरमाई जुबान की नेमत अता फरमाई कानों की नेमतें अता फरमाई अल्लाह हम आपका किसी तरह शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह मौला जो नेमतें आपने दी हैं अल्लाह हमको सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह ये कानों को ये आंखों को अल्लाह सही तरीके पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह आप राजी हो जाएं ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह जिन कामों से आप नाराज होते हैं आपका गुस्सा नाजिल होता है उन कामों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमें देर और दूर के लिए कबूल फरमा अपने नेक बंदों में शामिल फरमा अल्लाह के वलियों में शामिल फरमा अल्लाह जो भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा के लिए अता फरमा अल्लाह जो कर्जदार हैं उनके कर्ज के असबाब मुहैया फरमा अल्लाह जो बेनिगाह हैं अल्लाह उनके नेक सालेह जोड़े अता फरमा अल्लाह जो भी औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा अल्लाह जिनकी औलादें हैं उनको नेकोकार बना माँ बाप की आंखों की ठंडक बना अल्लाह आखिरत के लिए नजात का जरिया बना अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को आपने अल्लाह सेहत दी तंदुरुस्ती दी आफियत दी अल्लाह इसके साथ हमें आखिरत के दर्जात की बुलंदी का जरिया और इसी तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह उसका सलीका अता फरमा अल्लाह तमाम को अपनी मोहब्बत और रजा नसीब फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा अपनी जिंदगियों के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो उसकी तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारे बड़े जो हैं अल्लाह उनके साहब को तादर सेहत के साथ कायम फरमा दायम फरमा अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफ़िरत फरमा अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मगफ़िरत फरमा अल्लाह हमारे दोस्त अहबाब की मगफ़िरत फरमा अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफ़िरत फरमा अल्लाह हमारे वालिदैन में से जो गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा अल्लाह उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा अल्लाह जो जिंदा हैं उनकी खिदमत कर उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हदीसों में हमने सुना है बाप जन्नत का दरवाज़ा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है अल्लाह उनकी दुआएँ लेकर अल्लाह अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमा کے زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں کھلایا پلایا پالا, اے اللہ ہم کا احسان ادا نہیں کر سکتے. مولا اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم یہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں آپ کے نیک بندے کے پاس, اے اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دیجیے, اے اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دیجیے. اے اللہ اسی کالے دل کے ساتھ اگر ہم واپس جائیں گے تو دیکھنے والے ملنے والے پوچھیں گے کہ اتنے دور جا کر آئے تھے مگر اسی کالے دل کے ساتھ تو واپس آئے ہیں. اے اللہ ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی عطا فرما. اے اللہ آپ جس طرح پسند کرتے ہیں جن نے کاموں کرنے کو پسند کرتے ہیں اسے نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام کو مرغا اور محبت نصیب فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہیں ان سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کفیل سے قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.